हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान की गाड़ी निमानी हाउस के सामने आकर रुकी थी, जिसमें से अनाही और वो दोनों एक साथ बाहर निकले। दरवाजे पर पहले से निवेदिता बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वहां आते ही अनाही ने पहले निवेदिता के पैर छुए और फिर उनके गले लग गईं। निवेदिता ने आंखें बंद करके एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। इतनी मुश्किल से तो मैं इतनी अच्छी बहू ढूंढी थी, कहीं भगवान मुझसे छीन ना ले। पर उनका लाख लाख शुक्रिया है, तुम वापस आ गईं और तुम्हारे पापा का भी मन बदल गया। ये सुनकर अनाही ने मुस्कुराकर रूहान की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ रूहान जी की वजह से हुआ है। उनकी केयर देखकर पापा ने यहां वापस आने के लिए हाँ कर दी। उसकी आवाज में उदासी थी। हमेशा की तरह वो खुश होकर नहीं बोल रही थी। और ये महसूस करके निवेदिता ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा लाल हैं, तुम इतना रोई थी क्या? और अगर रूहान वहां पहुंच गया था तो तुम्हें रोने की क्या जरूरत थी? ये रोने धोने वाला काम सिर्फ विवाह पर सूट करता है, तुम पर नहीं। तुम तो बहुत स्ट्रांग बच्ची हो ना। अनाही ने मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल करते हुए कहा, हम पर कभी कभी स्ट्रांग बच्चे भी रोते हैं जब उन्हें पास पड़ा झटका लगता है। अभी मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो निवेदिता के बगल से तेज कदमों से अंदर चली गई। वही निवेदिता बस उसे देखती रह गई। उन्होंने हैरानी से रूहान की तरफ देखते हुए कहा, इसे क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा उदास है? रूहान खुद उनसे नजरें फेर रहा था और निवेदिता को उम्मीद भी यही थी कि रूहान कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो रास्ते से हटते हुए बोली, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी भिजवाती हूँ। रूहान बिना कुछ जवाब दिए तेज कदमों से अनाही के पीछे पीछे जाने लगा। निवेदिता ने देखा कि अब रूहान तेज चलने की वजह से लगभग दौड़ते हुए जा रहा था, और ये देखकर निवेदिता का मूड फिर से ठीक हो गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, जब इन सबको पता चलेगा कि विवाह प्रेग्नेंट है तो सब कितने खुश हो जाएंगे। रात को ही एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करती हूँ, सबको एक साथ बताऊंगी। इतना बोलकर निवेदिता खुद में ही खुश होते हुए किचन की तरफ गईं और वहां मौजूद कुक को कॉफी बनाकर रूहान के कमरे में भेजने के लिए बोलकर खुद अपने कमरे में चली गईं। दूसरी तरफ रूहान अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि अनाही इस वक्त बालकनी में बैठी थी और उसकी गोद में शुगर बेबी थी, जिसके बाल सहलाते हुए अनाही उससे बातें कर रही थी। रूहान रोमांटिक कदमों से उसके पास गया और फिर उसके सामने बैठकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आपको तो बिल्लियां पसंद नहीं है ना मैडम जी, आपको इरिटेशन नहीं हो रही है इससे? अनाही ने गहरी सांस छोड़ते हुए आंखें उठाकर रूहान की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे आपसे जुड़ी किसी चीज से इरिटेशन नहीं होती है और आपकी शुगर बेबी तो इतनी प्यारी है, इसे कैसे किसी को इरिटेशन हो सकती है? शुगर की तारीफ सुनकर रूहान को बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई उसके अपने बच्चों की तारीफ कर रहा हो। वो खुश होते हुए बोला, हाँ ये तो है कि कितनी प्यारी है, मुझे भी इसके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये जवाब ना दे, इसका म्याऊं बोलना फिर पूंछ हिलाना यही इस बात की निशानी होती है कि इसे मेरी बातें समझ आ रही हैं। आप भी इसे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हैं, ये सबके सामने उसका मजाक नहीं उड़ाती है और ना ही आपको जज करेगी कि आप ऐसे हो। अनाही ने धीरे से शुगर को अपनी गोद से उतारा और फिर खुद उठकर रूहान के पास बैठकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं आपका सहारा बन पा रही हूँ या नहीं, आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं समझने की बस कोशिश कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रूहान ने अपना सर अनाही के कंधे पर रखकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप मेरे साथ हैं ये काफ़ी है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और आपकी एक कोशिश भी सारे एफर्ट्स की तरह मेरे लिए बहुत मैटर करती है। रूहान ने भी अपना सर धीरे से अनाही के सापर टिकाते हुए कहा, और अगर कभी हमारी लड़ाई हो जाएगी तो? अनाही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो लड़ाई कर लेंगे, रिश्तों में तो लड़ाइयां भी होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिश्ता टूट जाता है या फिर उसमें कोई खराबी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुनकर रूहान ने एक चैन की सांस ली और फिर आगे बोला, और आपको बुरा नहीं लगा ये जानकर कि मैं जंगल में काम करता हूँ और ऐसा काम जिसके लिए मैं सैलरी लेता नहीं हूँ, बल्कि अगर बाय एनी चांस मैं वहां मौजूद ना रहूं और किसी और से काम करवाऊं तो मैं सैलरी देता हूँ और मैं पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे इस बार तो मैं पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी। अनाही शांति से उसकी बात सुन रही थी, उसका मन नहीं था रूहान को रोकने का, वो चाहती थी बस रूहान बोलते रहे और वो ऐसा कर भी रहा था। उसे जब अनाही की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आगे कहा, इस बार ना संडे वाले दिन मैं आपको जंगल का दूसरा इलाका दिखाऊंगा जहां जंगली जानवर नहीं रहते हैं और वहां कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। वहां ज्यादा बड़े पेड़ नहीं है बल्कि छोटी घास है, क्योंकि वहां एक तालाब है और आपको पता है उसमें हर वक्त कमल खिले रहते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं वो। वहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी लेकर आएंगे, मेरे कमरे में सिर्फ मेरी फोटो लगी है और ये सब बहुत बोरिंग हो गया है, हम इसे भी चेंज करेंगे। जैसे आपने इस बालकनी का इंटीरियर चेंज किया था वैसे ही कमरे का भी करेंगे, फिर सब अच्छा अच्छा लगेगा। अनाही ने धीरे से हूं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान ने आगे कहा, और अब तो शुगर के बच्चे भी आएंगे तो हमें उसके लिए कमरे का इंटीरियर भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आएंगे। पैसे तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और मुझे पता है आपको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली की शॉपिंग भी करेंगे। इस बार आपकी दिवाली ड्रेस मैं डिसाइड करूंगा और मेरे कपड़े आप डिसाइड करना। वैसे हम कपल ड्रेस भी पहन सकते हैं, जैसे आजकल के लोग पहनते हैं, सेम सेम कलर वाली, वो अच्छी लगती है। फिर तो कमरे में लगाने के लिए और अच्छी फोटोज हो जाएंगे। इस बार भी अनाही ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और रूहान ने धीरे से अनाही का सर अपने कंधे से हटाते हुए कहा, लगता है कॉफी आ गई है, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको। अनाही ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और रूहान लगभग दौड़ते हुए बालकनी से निकलकर कमरे के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो एक सर्वेंट दोनों के लिए कॉफी मग लिए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद रूहान कॉफी लेकर अनाही के पास आता है और एक कॉफी कप उसके हाथ में देते हुए बोलता है, मुझे क्या लगता है आपको बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं है, आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। अनाही ने शांत नजरों से रूहान के चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पसंद है, मुझे बस अपनों की खरीबी पसंद है। बोलकर उसने कॉफी का एक घूंट लिया। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसकी इनसिक्योरिटी वहां से आई है जहां से वो पैदा हुई थी, कि उसके अपने उसे छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए उसने वो अग्रीमेंट करवाया था। अब उसे लग रहा था कि क्या सच में रूहान बस अग्रीमेंट पर साइन करना भी चाहता था या नहीं। उसने एक नज़र रूहान को देखते हुए कहा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, सही सही जवाब देना, मुझे फेक आंसर्स पसंद नहीं है। रूहान ने जल्दी से कहा, आप पूछें, मैं बिल्कुल सच सच बोलूंगा, मैं आज तक आपको कोई फेक आंसर नहीं दिया है और प्रॉमिस आगे भी नहीं दूंगा। ये सुनकर अनाही ने अपना गला दर करते हुए कहा, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि उस अग्रीमेंट पर आपने किसी दबाव में आकर तो साइन नहीं किए थे।
रूहान ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, उससे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, आपने मेरी इनसिक्योरिटी भी दूर कर दी थी ना, इसलिए। रूहान का ये जवाब सुनकर अनाही ने एक सुकून भरी सांस ली